चलते फोन भी दे। ओम नमः देव्या नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायव्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौरसाविनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदाभियो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते वन्दित्व सर्वसिद्धे भवमचल मनोवंगने पत्ते बोच्छामि समय पाहु मृणमोसे केवली वणिदम मणि हाँ देखो अगर पंचास्ती का होगा उसकी विशेष गाथा लेना है। विषय अपना जो चल रहा है भीत विज्ञानता सिद्धा उसमें मेरा जो विषय रहा है समय स्व समय पर समय और इनके भेद ज्ञान से भेद ज्ञान की सिद्धि। एक भी हो हिंदी का भी यहाँ तो रहता था अभी यहाँ ख्याल में नहीं आ रहा। हाँ है इधर रहने मिल गया भाई। तो अभी तक अपन ने जो देखा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संयोजकों को आयोजकों को पहले बधाई दे दूं जिनको भेद ज्ञान नहीं हुआ होगा उनको हो गया होगा जिनको निर्णय नहीं हुआ होगा निर्णय की दशा में आ गए होंगे। ऐसा सबके अलौकिक बातें प्रवचन पूरी गंभीरता सरल शब्दों में रखी गई। तो समय स्वय समय पर समय की बात समय यही है उसके साथ बोल बताए थे समय सार गाथा दो से जीवो चरित दंशन नानदम तम ही जान ससमयम ओगल पदे सठिदम ओगल कम पदे सठिदम चे तम जान पर संयम। समय क्या है उसके सब बात हो गई स्वय समय पर समय क्या वो बात हो गई। अब एक बिंदु रह जाता है कि शुद्धोपयोग में स्थित ही मुनिराज स्वय समय है या ज्ञानी जब भी शुद्धोपयोग में निर्विकल दशा में तभी स्वय समय है या वो जब अशुद्धोपयोग की दशा में आ जाते हैं तब वे पर समय हो जाते हैं क्या। एक बड़ा एक चर्चा का विषय रहा है। तो पहले देखो इसमें गाथा 138 में निकालना भी है 154 निकालो पहले उसका उसमें पंचायती का है गाथा 154। यहाँ से आचार्य देव ने ये मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका प्रारंभ की है और लिखा है मोक्ष मार्ग के स्वरूप का कथन है जो अपनी बात चल रही है। मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रकट होता है कि भेद विज्ञान से ही होता है संवर से ही होता है। तो उसकी टीका में उन्होंने लिखा है समय कम है इसलिए मैं खास खास बिंदु ही टच करूंगा और भी अनेक गाथाएं बतलाना है शॉर्ट में। जीव स्वभाव में नियत चारित वह मोक्ष मार्ग है जो गाथाएं पढ़ लेते हैं। जीव स्वभावम नाणम अपटे हद दंशनम अनन्नमयम चरियम चे सुनियदम अत्युत मणिंद्रियम भणियम आत्म स्वभाव अनन्यमय निर्विघ्न दर्शन ज्ञान छे दृढ़ ज्ञान नियत अनिंद जी अस्तित्व से चारित्र छे। यद्यपि मोक्ष मार्ग में चारित्र की उर्धता हो जाती है ज्ञान की तो जो अभी तक अपन ने स्वय समय कर्थ कर्तृ प्रभावों से भिन्न अपने ज्ञान में एकत्व और वो कैसा एकत्व वो शब्द याद रखना जानना और एकत्व पूर्वक परिणम उसको कहा था वहाँ पर समय शब्द करते जानना और एकत्व पूर्वक परिणम तो ज्ञाय को ये अपने ज्ञान वर्तमान में जानना जो साधकतम साधन है, जो अभी सिद्ध किया गया साधकतम अथवा प्रण शक्ति है कि नहीं अपने में, ये ज्ञान इस असली पूंजी है। इसका गैरलक्ष्य उपयोगी उसका दुरुपयोग है, और जिसका ज्ञान है उस ज्ञायक का ज्ञान वही सदुपयोग है। तो यहाँ पर बात कही गई कि जीव स्वभावम नाणम, आत्म स्वभाव जो जीव का स्वभाव है वो तो ज्ञान है और अप्रतियत दर्शन है, और जो कि अनन्यमय जीव से अनन्यमय है अर्थात अभेद ही है। उन ज्ञान दर्शन में नियत अस्तित्व, अस्तित्व अनिंदित जो कि अनिंदित है, उसे जिनेन्द्रों ने चारित्र कहा। दर्शन ज्ञान को चारित्र कहा, जो सत स्वरूप है ज्ञान दर्शन वही, उसमें अनिंदित माने उसमें ही लीनता रूप वर्त निकालेंगे। तो यहाँ पर स्वय समय का अर्थ हो जाएगा स्वय चारित्र, और उसका अर्थ निकलता है स्वरूपाचरण चारित्र, और पर चारित्र माने मूलराधीश। तो ये प्रश्न खड़ा होगा अभी कि जिनका मिथ्यात्व निकल गया और अभी साधक अवस्था में राग द्वेष प्रणाम चलता है, शुभ अशुभ राग होते हैं चौथे पांचवें गुण स्थान में, मुनिराज को बुद्धि पूर्वक छठे में प्रमत्त अवस्था में और आगे अबुद्धि पूर्वक दसवें तक, तो ये जो इसको क्या कहना, ये जीव के स्वभाव से विरुद्ध भाव है। तो उसके लिए वो कहते हैं, देखो पहले तो ये बात समझना, 154 गाथा में कहा जीव स्वभाव में नियत चारित्र वो मोक्ष मार्ग, और जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान दर्शन है क्योंकि वे जीव से अनन्यमय, अनन्यमय उसमय नित्य तादात्म्य सिद्ध संबंध। ज्ञान दर्शन का जीव से अनन्यमय पना होने का कारण ये है कि विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य जिसका स्वभाव है ऐसे जीव से वे निष्पन्न है, अर्थात जीव द्वारा ज्ञान दर्शन रचे गए। ज्ञान को कहते हैं विशेष और दर्शन को कहते हैं सामान्य। तो विशेष चैतन्य के दो विद, विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य, और सब चैतन्य का ही स्वरूप है। अब जीव के स्वरूप भूत ऐसे उन ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित ऐसा जो उत्पाद वे ध्रुव रूप वृत्तिमय अस्तित्व, गजब का शब्द डालते, ऐसा जो ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित निश्चलपने दृढ़ रूप स्थित है, ऐसा जो उत्पाद वे ध्रुव रूप वृत्तिमय अस्तित्व, उसकी वृत्ति उसका स्वरूप वर्तना होना, ये वृत्ति के दो अर्थ होते हैं, एक सदाकाल होना उस रूप रहना वो लक्षण में शामिल होता है, और एक उसका वर्तन प्रति समय का परिणमन। तो द्रव तो सभी उत्पाद के द्रवतम सठ ही बने हुए हैं, तो उसका यह भेदना करते हुए ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित ऐसा जो उत्पाद या द्रव रूप वृत्ति में अस्तित्व, पहले अस्तित्व को नक्की किया, ऐसा अस्तित्व जो ज्ञान दर्शन में है उत्पाद या द्रव सत है, इसके अपन पहले बोल सारे स्पष्ट कराए हैं, जो कि राग आदि परिणाम के अभाव के कारण अनिंदित है। राग आदि माने क्रोध माया लोभ आदि जो जितने भी विकारी विभाव भाव है पौद्गलिक भाव है उनके अभाव के कारण अनिंदित है, वो चारित्र है, वो मोक्ष मार्ग। अगर इसका मतलब हुआ जो स्वभाव ज्ञान दर्शन मय उसमें यदि ये निंदा योग रागादि परिणाम का अभाव है त्रिकाल स्वभाव है त्रिकाल अभाव, और ऐसा अगर उसका प्रणमन है एकत्व पूर्वक जानना और वितराग भाव रूप प्रणमन करना, तो वो वही चारित्र वही मोक्ष मार्ग। संसारियों में चारित्र वास्तव में दो प्रकार का है, स्वचारित्र और परचारित्र, स्वय समय और पर समय ऐसा उसका अर्थ। देखो ये सब दे दिए ना, मैंने क्या कोशिश की कहाँ कहाँ स्वय समय पर समय शब्द आए जो मेरे ख्याल में उनको लेने पर, और किस प्रकार अमृत चंद्राचार्य ने उनको घटाया है। तो यहाँ कहा कि स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व स्वरूप चारित्र वो स्वचारित्र है, और पर भाव में स्थित अवस्थित अस्तित्व स्वरूप चारित्र प्रचारित्र है, उसमें से अर्थात दो प्रकार के चारित्र में से स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र जो कि प्रभाव में अवस्थित अस्तित्व रूप से अस्तित्व से भिन्न होने के कारण अत्यंत आनंदित है, वह यहाँ साक्षात मोक्ष मार्ग रूप अवधारणा। अब 155 गाथा, समय कम है, मैं तो इतना हिंट करना था कि स्वरूप चरणम चरित्रम जो आता है ना, तो ऐसा जब स्वरूप का टंकोत्कीर्ण निर्णय जिसको हो चुका होता है और उसकी अनंत अनंत महिमा आ चुकी होती है। आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक इशारा आया था कि रखने के लिए भी तुम स्वतंत्र पैदल नहीं है,
अधिकार
भी है, च्वाइस है आपकी, रखना है संसार में या निकल भागना है, कर्मों आदि का दोष छोड़ दे। हरिवंश पुराण में एक श्लोक आता है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, कथा तो चलती है हरिवंश की और वो सारी बहुत सारी, उसमें एक ऐसा श्लोक आया बहुत अनुष्ठ छोटा स्थान, स्वयं कर्म करोति आत्मा, स्वयं तत्फल मस्नति, स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्माद विमोचति, स्वयं कर्म करोति आत्मा। आत्मा स्वयं ही कर्म करता रहता है, विकार विकार विकार, अभिकारी कर्म तो इसको जानते ही नहीं, कर्म पुण्य पाप पुण्य पाप, स्वयं कर्म करोति आत्मा, स्वयं तत्फल मस्नति, स्वयं ही उसका फल भोग रहा है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और उसके बाद लिखते हैं स्वयं भ्रमति संसार, स्वामी संसार में भटक रहा है, और स्वयं तस्माद विमुचित, और स्वामी उससे छूट जाता है, कर्म वर्म का बिल्कुल एक तरफ है, यानी तेरे ऊपर है, तुम्हारी चॉइस है। जैसे किसी घर जाते ना, आपको क्या चलेगा सर, चाय कॉफी या गर्म है ठंडा, ऐसा पूछते लोग, तो फिर च्वाइस बताते ही नहीं बताते। तो आज निर्णय करो हमारी तुम्हारी क्या च्वाइस है, इस शिविर से क्या उपलब्धि होगी। स्वयं समय उपाधे है, पर समय ही है, और समय जो है प्रमाणभूत द्रव पूरा, जिसको पूरी तरह ज्ञान में बैठा लिया है वो है गे, और समय सार जो है वो है दृष्टि का विषय, वो है धे, ध्रोकर नोकर भाव का अनुसर है वो धे। तो उसकी सिद्धि करते हुए आचार्य गुरु अब देखो 155 गाथा में क्या कहते, जीवो सहाय दो अणियद गुण पद्योध पर समूह, यदि कुण भी सगम समयम पवर सदी कम बंधा दो, निज भाव नियत अनियत गुण परे पड़े पर समय छे, तेजो करे स्वत समय में तो कर्म बंधन भी छुटे। जीव ध्रुव अपेक्षा से स्वभाव नियत होने पर भी यदि अनियत गुण पर्याय वाला हो तो पर समय है, क्यों तो अनियत गुण पर्याय होती थी गुणों की पर्याय समझाएंगे, यदि वो नियत गुण पर्याय से प्रणमित होकर स्वयं समय को करता है तो कर्म बंध से छूटता है। अभी 294 गाथा चली, उसमें तो ऐसा है मोक्ष अधिकार की ना गाथा, वो बंध की भेद प्रभेद जानने से 8 मूल प्रकृतियां 148 उत्तर प्रकृतियां पूरा करणामयोग पूरा दिमाग में आ गया, पूरा कंप्यूटर माइंड किस गुण स्थान में क्या बंध इच्छित आदि सब जान लिया, और उससे उपयोग में विशुद्धि होती है भी सिद्ध करेंगे। लेकिन तेरे इस ज्ञान से इससे बंधन से नहीं छूटा जा सकेगा, ये पूर्व की गाथा में आ चुका है। और उसके बाद लिखते हैं तो चलो बंध की चिंता करें, अब मैं बंधाऊं कैसे छूटू कैसे छूटू, तो आचार्य कहते तेरे पास ये बात समझ ले, साध जो तेरा अपना विषय है त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा, वो तो त्रिकाल शुद्ध है, विषय शुद्ध साधन शुद्ध चाहिए तो कहाँ से लाएगा, अरे कहीं से लाना नहीं, तेरा उपयोग साधन त्रिकाल शुद्ध है, और जितना तू बहिर्मुखता से जो साधन बनाता रहा है आज तक और बनाना चाहता है वो त्रिकाल अशुद्ध है, साधन बाहर नहीं है तेरे, इसलिए गरीब अमीर या त्यागी वृत्ति उसकी बात नहीं है। तुम किसी देश में किसी भी देश में हो, तुम्हारा विषय और तुम्हारा विषय सुर्त ज्ञान साधन सदा कल तुम्हारे पास मौजूद, क्योंकि चेतन भाई ने बताया ना दूसरे उससे अधिकार से मोक्षा प्रकाश प्रगट लक्षण है, वह इसका दुरुपयोग संसार है, इसका सदुपयोग मोक्ष मार्ग है। समय के सदुपयोग से समय सार की प्राप्ति होती है, और समय के दुरुपयोग से शुद्ध संसार की प्राप्ति होती है। हाँ संसार शुद्ध होता है, बताऊं कैसे बताएं, एक व्यक्ति बहुत शराबी, वो उसको आया मुझे मरना है, खुद तो यहाँ बन रहा है पागल व्यक्ति। एक मेडिकल दुकान में गया, मुझे जहर चाहिए दे दो, तो समझ गया ये हुए है क्रम में, तो पैसे लाया है, पैसे मांगता है मेरे से। अरे नहीं नहीं तेरे से नहीं लूंगा, तेरा तू तो मेरा मित्र है, दे दूंगा, लेकिन ये बता ये जहर तुझे मैं दे रहा हूँ तो यहाँ तो नहीं पिएगा, यहाँ पिएगा तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, तो क्या करना, घर जाके पीना। हाँ घर जाके पीऊंगा। और वो समझदार था मेडिकल वाला, उसने रोज वाटर क्या बोलते हैं गुलाब जल की शीशा बिकती है ना, उसने उठा के दे दी कागज लपेट की, देखो सब देख रहे कहेंगे इसने जहर दिया, ये चुपचाप ले जा और उसकी जेब में खुद रख दिया, पैसे की चिंता मत करो, जाओ जाओ घर जाओ। और उसने सोचा वो कैसे भी घर तक पहुंच गया, कड़कड़ा तो मिल गया जहर, और रात में जाकर के वो जब भी पहुंचा पी करके सो गया। जब वो नशा उतर गया फ्रेश हुआ तो उसकी इतना गुस्सा आया, ये इंडिया में शुद्ध जहर भी नहीं मिलता, जहर पीने का मतलब क्या होना चाहिए था गरीब भाई, सदाकाल के लिए हो जाता ना। तो जो अर्थ क्रिया करने में सक्षम नहीं है वो जहर है, ये बताना मुझे। जहर उसे कहते जो प्राणांत कर दे तो उसने अर्थ क्रिया की कहलाएगी। तो ये ज्ञान, ये जो गुलाब जल की तरह शांति प्रदाता, इसमें इसने मोहराज ने तीसरा पी वो महामद की बना दी भूल आपको धर्मतवादी। अब साथ में ही है, इतना तो सुन रहा है, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, सारी डिमांड सारी फरमाइश चल। तो आचार्य गुरु ने उसको समझाया, तू जरा एक बार ये डोज तो पी ले मेरा, डॉक्टर साहब नाराज होते हैं, हम आपको लिख के देते हैं, ये इंडियन कल्चर में बड़ा गड़बड़ है, भूल जाते हैं, फिर कहते हैं सब तबियत गड़बड़ हो गई, तुम ध्यान नहीं रखते हो। तो यहाँ इतने ही कह रहे हैं, जैसे तुम ये शरीर का ध्यान रखते हो, दवाओं का ध्यान रखते हो, ऐसा कभी तुमने सचमुच में सोचा क्या, अनंत भवों का भाव कराने का साधन उपाय, और कहना चाहिए सम्यक देखना देने वाले गुरु आदि सम्मिल गए हैं, इसके बाद भी तुम यहां से रह जाओ। तो देखो इस गाथा में क्या कहा, स्वय समय के ग्रहण और पर समय के त्याग पूर्वक कर्म क्षय होता है। ग्रहण त्याग, ग्रहण त्याग सुन लेना आत्मा, अभी किसका ग्रहण हो रहा है, एक्चुअली क्या है, जैसे ये पंचाशी का है या समय सार कोई भी ग्रंथ है, सब अपना अपना लाए हो, और रमेश भाई आपने अपने यहाँ रख दिया, मैं लाना भूल गया, हर दिन लाता था, आदत के अनुसार मैं लेके बाहर जाने लगा कि मेरा है, टीव पड़ी है ना, तो फिर बाहर निकल के आप क्या बोलोगे, हेमचंद जी देखना क्या है, क्या है भैया, क्या लिखा, रमेश भाई बोली जा, हमने क्या जाना, अरे क्या जाना, कहा लिखा हुआ मेरा नहीं है। जिस समय ये ज्ञान जान ले, 34वीं गाथा समय सार, सर्वभाव वही जान, प्रत्याख्यान भावों का करे, इससे नियम से जानना ज्ञानी प्रत्याख्यान, ज्ञान में भी ज्ञान होना है, ज्ञानी साधक संसाधन है। और अभी गुरुदेव ने कहा निबोध से लेकर के उसके पास तो विचारे पास क्या है, स्वास्थ्य भाव पे चलते हैं, लेकिन वो पास वो साधन नहीं है विचार करने का, और इसको मिला है वो विचार करने का साधन। तो वो सिमल भाई सुनाया करते थे एक दृष्टांत कि गांव में एक व्यक्ति डेली अपने मकान के बाहर होटल में बैठ के दातुन करता था, और वहां से सवेरे सवेरे भैंसे निकलती थी, सुना है बहुत सारे लोगों ने, और वो भैंसों का एक भैंस का ऐसा बड़ा गोल सींग था, तो बहुत दिन सोचता था मेरी गर्दन इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी, श्री भाई महीनों से भैंसों तो चली जाती थी, तो एक दिन भैंस वही आके रुक गई, यहाँ वो दातुन कर रहे हैं, उसने आठ दाव है और उसने गर्दन उसमें डाल दी, भैंस बिदक गई और तो चल पड़ी आगे, चिल्लाया तो गर्दन टूटने को आए, बचाओ बचाओ कर लुक दौड़े, बड़ी मुश्किल से उसको रोक के पकड़ के उसकी गर्दन निकाली। बोले जोशी कुछ तो सोचना था, बोले एक महीने से तो सोच रहा था, बोलो तुमने सात पांच दिन में क्या सोचा, हूँ कौन छू क्या थी, सुन स्वरूप से मालूम करूँ, होना संबंधी बलगना थे, राखू ये परिहर, राखू ये परिहर, तो ये बात चल रही है, ये ग्रहण त्याग मार्ग किसका त्याग करता है, कहाँ होता है, ज्ञान में ही जानना होता है। ऐसे प्रतिपादन द्वारा ये जीव स्वभाव में नियत चार वो मोक्ष मार्ग है। जीव स्वभाव जो दर्शन ज्ञान में उसमें अवस्थिति स्थिरता किसकी, ये उपयोगी जो इधर उधर भागम भाग करता है उसको निजघर मिल जाए, निजघर बिना विश्राम ना ही आता है। आज निश्चय हुआ, हुआ निश्चय तो देखो अभी जीव स्वभाव में नियम चार वो मोक्ष मार्ग है ऐसा दर्शा है। संसारी जीव धर्मपेक्षा से ज्ञान दर्शन में अवस्थित होने के कारण स्वभाव में नियत निश्चल रूप से स्थित होने पर भी जब अनादि मोहिनी के उदय का अनुसरण करके परिणति करने के कारण उपरक्त उपयोग वाला अशुद्ध उपयोग वाला होता है तब स्वयं भावों का विश्वरूपना है। विश्वरूपना अनिरूपना ग्रहण किया होने के कारण उसे जो अनियत गुण पर्यायपना होता है वो पर समय तक प्रचारित, मैंने कभी शुभ कभी अशुभ, मैंने स्वभाव रूप नहीं उसको अनियत कहना है। अपने घर से बाहर भटक रहा है, कभी उस गे को कभी अपने भोजन करने बैठते ना तो उसमें विभिन्न प्रकार के आइटम रखे हैं, तो क्या करता है, कभी नमकीन खाता है सेव, कभी मीठा खाता है, क्यों, फिर पलटता है, कोई स्थिरता नहीं है। मैंने उसको इतना ही बताना है जितना राजदेश में प्रणाली सब अनियत, ये सब क्रमी में है वो अलग बात है अपनी, लेकिन अपने स्वभाव से चित हुआ तो इसका कोई ठिकाना नहीं, कहो क्यों दौड़ा चला जाता है। अरे अभी अपन यहाँ बैठे एक क्षण में ये सब अमेरिका वाले अमेरिका पहुंच जाए, इससे बड़ी स्पीड होगी किसी की,
बैठे बैठे
बैठे बैठे। तो ये उपयोग जो है ना इसको इस प्रकार से कहा, इसको बंदर की उपमा दी है आत्मानुशासन में, और वहाँ पर कहा है तेरा बंदर ये बहुत उछल कूद करता है, तू पहले सात कुरु की झाड़ पे चढ़ा दे इसको, कर उसको उछल कूद, बंदर कहा उछल कूद करता है झाड़ पे, तो इतना जिनागम है, एक बार पढ़ो तो चाहिए सब पूरा आत्मिक की कामना से। और वही हरिवंश पुराण में एक ऐसा श्लोक और मिला, बहुत पहले नोट कर लेता था कोई अच्छा लगा, जो अपन ये पढ़ते ना स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय परम तप है, ये एक अनुसूक्त छंद का अंतिम चौथा चरण है। बहुत दिनों से खोज रहा था फिर कहीं वो डायरी में नोट मिल गया, बाह्य अभ्यंतर भेदने तपो दो वर्णित अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमं तपः, वायु और अभ्यंतर के भेद से तप को दो प्रकार का कहा, जहाँ वो बात चल रही होगी वहाँ पे, लेकिन वो कहते अज्ञान का ज्ञानी दुश्मन होने से स्वाध्याय परम तप, अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमं तपः। और स्वाध्याय का ये जो स्वाध्याय ये दृढ़ स्वाध्याय, और स्वयं में भाव स्वाध्याय कहो, स्वयं में नित्य रूप बने में लीनता रूप हो। मेरे को एक बार दिल्ली में वो समय सार गोष्ठी हुई थी 2008 में, तो एक वहाँ पर सज्जन के वो बोले हेमचंद जी आप एक संडे का सीरियल जरूर देखा करें, 8 घंटे का आता है, बहुत बहुत अच्छा है सब बताने लगे। मैंने कहा सिर्फ 8 घंटे का, और वो संडे को इतना वेट करना पड़े, हमको तो 24/7 का सीरियल चाहिए, और वो मेरे पास है। मैंने अरे क्या बात कर रहे, सीरियल का मैंने विश्लेषण किया, सीरियल माने सीधा रियल, और वो यहाँ चल रहा है, मेरे ज्ञान जान रहा है उसको, अब राग द्वेष जो प्रति समय चल रहा है, कोई भुजा बंद हुआ ही, इसकी लाइट लाइट ऑफ नहीं होती कभी, ये रियल है वो अनरियल है, वो अनरियल है, वहां तो सब बनावटी होता है, बनावटी दिखावटी सजावटी होता है, यहाँ तुम्हारा नेचुरल चल रहा है, देखो ना इसको तुम्हारे ज्ञान सीधे सीधा रियल, और रियल को देख लोगे तो रियलिटी में तुम्हें वेद्ञान ज्योति प्रकट हो जाएगी। तो यहाँ ये बात कही थी स्वयं समय स्वचारित रहे, हम वास्तव में यदि किसी भी प्रकार सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करके, ये शब्द तो बड़ा प्रिय लगता मुझे अमृत चंद्राचार्य, कई श्लोक कथम अपनी 20वें श्लोक में है, कलश में 21वें 22वें 23वें और जाकर के 34वें भी है, और किसमें इसमें 127 जो अभी चला वेद ज्ञान कथम अपनी धारा वायना ज्ञानी। अरे यहाँ लिखा ना 23वां कथमपि आगे तो बोलो क्या है, क्या है लाइन, अरे संस्कृत की लाइन को बोलो अर्थ क्या, कथमपि मृत्वा तब तो कौन कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ति पार्श्वर्ती मूर्तम। तो ये शरीर को एक अंतर भौतिक क्षण के लिए एक एक जल ये मिट्टी खाया भेड़ भिन्न और मैं चैतन्य स्वामी अनुभव करके दू। अरे साहब हर दिन तो हर समय तो शरीर का अनुभव कर रहे, तुम करे अनुभव करके तो एकत्व से कर रहे हो, उससे पृथकत्व लक्षण से ये पड़ोसी के बारे में सोचो। आपसे पूछा जाए कि आपके पड़ोस में कौन बैठा है, तब वो लोग केतन में है ना, केतन में पूछा जाती। जिस क्षण ऐसा दिखेगा अपने ज्ञान में ये शरीर कर्म नो कर्म ये सब पड़ोसी है, मैं सिर्फ मात्र ज्ञाय शुद्ध उज्ज्वल स्क्रीन हूँ, सिनेमा में होता ना वो स्क्रीन सब चलता रहता है, आप जल्दी दिखेगी वाणी बेहतर दिखेगा, सब लड़ते भिड़ते सब देखेंगे कुछ हुआ हुआ स्क्रीन पे, लेकिन जब तक इंटरवल नहीं होगा तब तक स्क्रीन कैसा पता नहीं चलेगा। वो इंटरवल ये है अंतर्मुख के लिए, कोई क्षण निकाल के देख जगत से मर जाए एक क्षण के लिए, जीवित हो जाएगा अंदर से, इतनी ताकत अंदर से ज्ञान में ला के निकाल। जो सुलभतम कार्य है उसको दुर्लभतम मान के बैठे, अथवा ताकत लगाता है राग हटाना है द्वेष हटाना है, अब मुझे व्रत पालना है करना है, बात जरा वैसी चल रही, सुनना ध्यान, पहले तू है कौन, तेरे स्वभाव में क्या मौजूद है, ये तो अपने आप जब तुम्हारा धूप लगेगी तुम हटके छाया में आओगे। तो इसलिए उसको कहते हैं क्रम में अपने आप आ जाएंगे सारी चीज। तो इस प्रकार से कर्म वंश से छूटा जा सकता है। अब इसी की गाथा निकालो श्रीट भाई 165 जिसमें बहुत विसंवाद और संवाद सब चला करती है, और इन्हें कहूंगा समय सार अनुशीलन में डॉक्टर भारे जी ने इसका अच्छा खुलासा किया। 92 से पहले में जब इसके बारे में सोचता था तो कुछ ऐसा लगता था कि ये ज्ञानी की है कि अज्ञानी की, और ज्ञानी की गाथा कुछ लोग अज्ञानी की मानते थे, कुछ अभी भी मानते हैं थोड़े बहुत, तो बहुत खुलासा आएगा। देखिए गाथा है अर्णानादो नानी यदि मरण विशुद्ध संभो गादो अवधि दुख मोक्तम पर समय रदो हवदी जीवो अज्ञानाति ज्ञानी यदि मन्यते शुद्ध संप्रयोगात् भवतीति दुख मोक्षा पर समय रतो भवती भवती जीवा। हरि जिन वर प्रमुख नीति द्वारा मोक्षनी आसागर अज्ञान भी जो ज्ञानी जीव तो पर समय शुद्ध संप्रयोग से या शुद्ध संप्रयोग कर तो शुभ भक्ति भाव से दुख मोक्षा भवती दुखों का मोक्ष माने दुखों का क्षय होता है। ऐसा यदि अज्ञान के कारण ज्ञानी माने, देखना उस गाथा में अर्णा नादो नानी ज्ञानी माने तो पर समय रहता जीवा पर समय रत जीव है अरंतादिक के प्रति भक्ति अनुराग वाली मंद शुद्धि से भी क्रमशः मोक्ष होता है। इस प्रकार यदि अज्ञान के कारण यानी शुद्धात्म संवेदन के अभाव के कारण रागांश के कारण ज्ञानी को भी मंद प्रसाद वाली झुकाव मंद प्रसाद वाला झुकाव बढ़ते तो तब तक वह भी सूक्ष्म पर समय में रहते। क्या करेगा था अज्ञान से ज्ञानी भी यदि अरंतादि की भक्ति से क्या मानता है दुखों का क्षय माने मोक्ष मानता है तो वो क्या होता है पर समय रत होता है। अभी आप हम आगे भाग में पढ़ेंगे ना, आप ही बताओ क्या वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है ऐसा सोचना कि समय दृष्टि बना रहता है। ये गाथाएं जो चल रही है 154 से मोक्ष मार्ग प्रपंच चूल का है, पूरी मोक्ष मार्ग की बात चल रही है और बात कही जा रही है, अब टीका ले लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारी बातें लेने का है। जो गाथाएं लिखी है और बतलाई थी रजनी भाई को, वो सब सच कर लेंगे हम। देखो ये सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है। सूक्ष्म पर समय स्वरूप आख्यानम एतत् संस्कृत की है ना इसमें साहब क्रीट भाई, संस्कृत देखो जरा, दो लाइन की टीका है अमृत चंद्राचार्य, बहुत सरल। यानी वो भी टीका लिखने में थोड़े चौंके होंगे, आप पढ़ लेना संस्कृत से मालूम पड़ेगा। अर्हदादिशु भगवत्सु सिद्धि साधनी भूतेषु भक्तिभाव अनुरंजिता चित्त वृत्ति अत्र शुद्ध संप्रयोगा, उसको लिखा है सिद्धि के साधन भूत ऐसे अरंतादि भगवंतों की प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्त वृत्ति वह यहाँ शुद्ध संप्रयोग है। अब हिंदी भी पढ़ रहा हूँ साथ में, अब दोनों देखते जाए। अब आगे देखो, अब खलु अज्ञान लव आवेशात यदि यावत ज्ञानवान अपि तथा शुद्ध संप्रयोगात मोक्षो भवती इति अभिप्राय में खिद्ध मानस तत्र प्रवर्तते तदा तावत सोपि राग लव सद्भाव पर समय इति उपगीयते, इति उपगीयते महत्वपूर्ण शब्द है। अथ नाकिम पुना निरंकुश राग कलि कलंकित अंतरंग वृत्ति इतरो जन इति। अब हिंदी देखो, कहते हैं सिद्धि के साधन भूत ऐसे अरंतादि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्त वृत्ति वह यहाँ शुद्ध संप्रयोग है। अब अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता होगा उसमें शुद्ध संप्रयोग में यानी स्वभाव में प्रवर्त है तो तब तक वह भी राग लव के सद्भाव के कारण पर समय कहलाता है, हो जाता है। नहीं लिखा, देखना इसका फिर बहुत ख्याल में आएगा। तो फिर ये बात से वो स्पष्ट होता है, तो फिर निरंकुश राग रूप क्लेश से कलंकित ऐसी अंतरंग वृत्ति वाला इतर जन क्या परसमृत नहीं कहलाएगा? अवश्य कहलाएगा। ज्ञानवान भी, पहले लिखा अज्ञान लव आवेशा और दूसरी लाइन में लिख दिया राग लव सद्भाव। अभी राग पूरा कल कहा था ना चेतन भाई ने कि मिथ्या तो गया तो राग लंगड़ा हो गया, लंगड़ा हो गया लेकिन अभाव को प्राप्त नहीं हुआ, वो डाइंग प्रोसेस में है, कुछ दिन का मेहमान है, कैंसर निकल गया तो अंदर से तो जीवन मिल रहा है लेकिन जो उसके और कमजोरी आदि कई अभी ये लेना ये सब अभी धीरे धीरे निकल जाएंगे। देखो क्या लिखा, अब इसके लिए ये तो बात हम यही अभी इसकी गाथा में देखो प्रीत भाई, नीचे फुटनोट है आपके सुन, ये जैसा ना चाहते कि टीका भी इसमें, इसलिए मैंने नहीं लाया नहीं जैसा ना चाहते, इसे में नीचे देखो इस छठवां भूल छठवां पॉइंट इस गाथा की श्री जयसेनाचार्य टीका में इस प्रकार विवरण है। कोई पुरुष देखो उसमें होगा बहुत बहुत महत्वपूर्ण अच्छा खुलासा किया है जयसेनाचार्य निकला। कोई पुरुष निर्विकार शुद्धात्म भावना स्वरूप परम उपेक्षा संयम में स्थित रहना चाहता है अर्थात शुद्धोपयोग में स्थिर रहना चाहता है, निर्विकार शुद्धात्मावना स्वरूप शुद्धोपयोग में रहना चाहता है परंतु उसमें स्थित रहने को असक्त वर्तता हुआ काम क्रोध आदि अशुभ परिणामों के वंचनार्थ अथवा संसार स्थिति के छेदनार्थ जब पंच परमेष्ठी के प्रति गुणस्तवनादि भक्ति करता है तब वह सूक्ष्म परसना रूप से परिणत वर्तता हुआ सराग सम्यक दृष्टि जैसा ना चाहे उन्होंने सब खुला कर चाहता क्या है स्वरूप में लीन रहूं शुद्ध उपयोग नहीं रह पाता है और उपयोग बहिर्मुख नहीं होता है बहिर लक्ष्य यानी कोई बाहर के पदार्थ का अवलंबन नहीं लेता है शुभ या शुभ तो इनमें गया तो उसने अंदर में क्या चल रहा है। अब ज्ञानी विवेकवान है कि साहब गांव तो जाना है धूप बहुत है थक गया हूं तो कहाँ खड़े रहना पेड़ की छाया तो पेड़ की छाया में खड़े हैं तो गांव पहुंच जाएंगे कि नहीं तो पेड़ की छाया में खड़े रहना है एक उपाधि
आगे बढ़ने के लिए
सदाप्य प्रयोजन मान, उस काल में जाना हुआ प्रयोजन मान क्या मैं देखो तो कहा काम क्रोधादि अशुभ परिणामों की वंचना अथवा संसार स्थिति के छेदनार्थ मिल गया आपके दूसरे चीज तो संसार स्थिति के छेदनार्थ जब पंच परमेश्वर के प्रति गुणस्तवन आदि भक्ति करता है के हेतु से अशुभ से बचे रहने के लिए और संसार स्थिति बढ़ना नहीं चाहिए ये दो हेतु है उसके और शुद्धोपयोग में जाना चाहता है लक्ष्य भ्रष्ट नहीं है लेकिन नहीं जा पा रहा है असक्ता कारण तो क्या करता है पंच परमेश्वर के प्रति गुणस्तवन आदि भक्ति करता है तब वह सूक्ष्म पर समय रूप से परिणत बढ़ता हुआ सरार्थ में दृष्टि तो बताओ सूक्ष्म पर समय कौन है ज्ञानी सम्यक दृष्टि ये लास्ट के लिए रखा था मैंने कब तक अब कोई कहे बुद्धि पूर्वक राग जब तक तो बुद्धि पूर्वक राधाम से गुण छठे गुण स्थान तक सरार्थ समय दृष्टि वहां तक कहलाता है अपेक्षा चौथे पांचवे छठे को सरार्थ समय दृष्टि कहते हैं आगे को वितराग समय दृष्टि का है दोनों प्रकार कथन में लिखना सम्यक दर्शन तो वितराग ही होता है लेकिन करणानियों की अपेक्षा से विचार करो जहाँ तक रागांश है ऐसे दसवें गुण स्थान तक वो सूक्ष्म पर समय करणानियों कहता है बारहवें गुण स्थान में पूर्ण शुद्ध उपयोग होता है और नीचे अशुद्ध उपयोग मानता है नहीं है लेकिन है ना अभी कमजोरी है कि नहीं अभी करणानियुक्त का तो थर्मोमीटर यह है 100 नंबर का पेपर है 100 नंबर लाओ तो पास नवन लाए तो फेल और द्रव्यानियुक्त कहता है तुम 100 में से 35-40 ले आए हो प्रमोट कर देंगे इतना तो तुमने अर्जित किया श्रद्धा तो सही कर लिया है ना ज्ञान तो सही कर लिया है ना ऐसी अलौकिक बात है देखो वो सलाह समय दृष्टि है और यदि वह पुरुष वही जो ज्ञानी अब देखो शुद्धात्मभावना में समर्थ होने पर भी यानी अपने उपयोग को अपने स्वरूप में नहीं एकाग्र करके अपनी आनंद अतीन्द्रिय नहीं भोगता है तो समर्थ होने पर भी उसे शुद्धात्मभावना को छोड़कर और शुभोपयोग से ही मोक्ष होता है ऐसा एकांत से माने तो वह स्थूल पर समय रूप परिणाम द्वारा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है कि कैसा खेल है मान्यता का बोलो अभिप्राय में संसार और अभिप्राय में मोक्ष तो ये अपेक्षा और आप समझ लिए अब इसके बाद चूंकि समय बहुत 5-7 मिनट बचा है आप प्रवचन सार निकाले 47 नयों के बाद उसमें दो गाथाएं दी है अपने इसकी गोमठ सार कर्मकांड की 894 और 895 जरा उसमें स्वयं समय पर समय बताता हूँ संक्षेप में बता देता हूँ इसको विस्तार करो तो बहुत 47 नए के बाद अमृत चंद्राचार्य की टीका वो टीका में है और हिंदी में भी यानी अमृत चंद्राचार्य ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम था कि गोमठ सार में क्या कहा सब जानते कहा क्या 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 उसका क्या लेना 47 में जहाँ एंड होते हैं ना 19 में कलश से पहले है 19 में कलश से पहले और जहाँ 47 शक्ति पूरी हुई 47 नंबर की बात देखो तदुक्तम दो गाथाएं दी निकला जाव दिया वयन वहा ताव दिया चेब होती नहीं वादा जाव दिया नहीं वादा ताव दिया चेब होती परसमिया एक गाथा और दूसरी गाथा भी परसमयानम वयनम मिच्छम खलु होदि सब वहा वयना जयराणम पुण वयनम सम्मम खूब कहंसी वयना दो इसका हिंदी देश अर्थ बतला देते इसलिए कहा है क्या कहा है जितने वचन पंथ है उतने वास्तव में नए वाद हैं और जितने नए वाद हैं उतने ही पर समय पर मत समय शब्द के 6 अर्थ बतलाए थे पहले दिन समय माने आत्मा समय माने शास्त्र समय माने कालद्रव, समय माने कालद्रव की पर्याय, छव द्रव तो आगे और छव द्रव, समय माने छव द्रव और समय माने मत मजहब, जिन मत या पर मत, ये बात यहाँ पे जितने वचन पंथ हैं उतने वास्तव में नए वाद हैं और जितने नए वाद हैं उतने ही पर समय यानी पर मत है। और दूसरे कलर श्लोक का अर्थ पर समय पर समयाणम वैणम मिथ्यम खलु होली सभा, पर समय मिथ्या मतियों का वचन सर्वथा अर्थात अपेक्षा बिना कहा जाने के कारण वास्तव में मिथ्या है, और जैनों का वचन कथनचित अर्थात अपेक्षा सहित कहा जाता है इसलिए वास्तव में सम्यक है। यानी तुम कोई बात बोलोगे तो द्रव दृष्टि से है कि पर्याय दृष्टि से, सारा उसके ज्ञान में तो सम्यक ज्ञान में द्रव दृष्टि पर्याय दृष्टि का पूरा ज्ञान बढ़ता है, जो अभी स्पष्ट किया था ना, कोई उसकी पर्याय रुक नहीं जाती है। ज्ञान जब स्वानुभव में आता है तो त्रिकाली को जानता है कि अपने ज्ञान पर्याय को जानता है कि आनंद प्रकट हुआ उसको जानता है कि बधाने जाने स्वयं को जानता है और आनंद आदि वहां पर है, स्वयं पर का जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ जानना मिट गया है, लेकिन लक्ष्य किसका है, धुरधाम का, चैतन्य धाम का, सिद्धायतन का, कहाँ है धुरधाम, कहाँ है चैतन्य धाम, कहाँ है सिद्धायतन, कहाँ है अरे मंगलायतन, कहाँ है वहाँ दृष्टि जम गई तो सृष्टि धर्म की और आनंद की शुरू हो गई, ऐसा है। अब उसके बाद नियम सार गाथा 156 निकालो,
बस लास्ट करके पूरा करते
हैं। जितना लिखा था रजनी भाई के लिए एक दिन गाता हूँ, टच करेंगे उसको बदला दें। 156 गाथा है ना, बहुत प्रसिद्ध। अभी क्या करना उसके लिए आचार्य देव दो गाथाएं मन 156 157 राणा जीवा राणा कम्मम राणा व्यम हवे लब्धी तम्मा वयन विवादम सब परे समी वज्जो। मैंने पढ़ दिया, वो लगा लेना तू, प्राय बहुत लोगों को मालूम है। आ गया, देखो हरी ही परमेश्वर, कोई हो गुजराती की कोई नहीं। राणा जीवा राणा कम्मम राणा विदम हवे लब्धि तम्मा वयन विवादम सब पर समी वज्जो। इसमें आए ना शब्द स्वय समय और पर समय, कहाँ कहाँ आचार्य ने क्या अर्थ में उसका प्रयोग किया। देखो हरी ही छह जीव विद विद कर्म विद विद लाभ छह विद विद हरे ते कारण निज पर समय से बाद परियर सब छे। नाना प्रकार ना जीवो छे, नाना प्रकार नो कर्म छे, नाना प्रकार ने लब्धि छे, तेथी स्वयसमयो अने परसमयो साथे स्वधर्मियो अने परधर्मियो साथे वचन विवाद भरजवा युग छे। वाद विवाद करे सो सदगुरु कहे। अगर देखो एक इंग्लिश में ऐसी कहावत कहीं पड़ी थी, फैक्ट वर्सेस ओपिनियन, वो कुछ मैंने ही उसको रूप दिया था, कहीं पढ़ा था, दबी टू रियल है उसमें लिखा दिया, फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन, फैक्ट्स विल प्रोड्यूस कंक्लूजन्स, ओपिनियंस विल प्रोड्यूस आर्गुमेंट्स, बी श्योर टू हैव फैक्ट्स सो दैट दे डू नॉट डिसअपीयर व्हेन क्वेश्चन हाउ व्हाई वेयर व्हाट। सत्य अगर हाथ में है किसी भी परिस्थिति में अधिक रहता है, अंजन चोर की तरह, अभी ली जाए परीक्षा, नीचे छुरी बल्लम गाड़ दिए जाए, एक शिका बनाया जाए, बैठ तू उसमें, अभी पता हो जाए सम्यक दर्शन है के लिए। ये दृष्टांत ऐसे ही सुना है अपन ने, अंजन चोर का नहीं सुना आपने कहानी, तो अपने को प्रयोग करना चाहिए ना, किसके साथ किसको हुआ किसको नहीं हुआ। माने वो दृढ़ता का इतना सूचित है, निसंकित अंक का अरे ज्ञान जब तक तुम्हारा तत्व ज्ञान से लवरेज होकर निशन कितने हो जाता वो उपयोग स्वरूप स्वरूप हो नहीं सकता। छोटन ज्ञान में जानकारी में कमी बेसी रहा अलग बात है, मूल प्रयोजन तत्वों के श्रद्धा में या उनके एक उपाधि के रूप में यथार्थ आना चाहिए। तो ऐसा ही बात कही यहाँ पे कि वचन विवाद छोड़ने लायक तो साधनियों के साथ चर्चा और टूर्नामेंट जी रहपूर्ण शिक्षा में तो लिखा है तुम जैसे साधन में लिखा है ना। और एक ही बात में कह दिया कि यहाँ यथा संभव आनंद है और तुम्हारे भी किसके अनुभव से चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की प्राप्ति नहीं लिखा वृद्धि चाहिए। देखो एक बात में पूरा जन अनुभव कह दिया यहाँ यथा संभव जितने में अपने में स्वरूप में लीनता है ग्रस्त है उतना आनंद है दुख की बात नहीं की। और तुम्हारे भी क्या किसके अनुभव से चिदानंद घन सचमुच में तो ज्ञान की बात कही है ज्ञान लक्षण आत्मा का 27 गाथा प्रचार उसमें अनेकांत बलवान ने लिखा कि ज्ञान आनंद सुख गुण के साथ ही होता है सुख गुण भी तद्रूप नित्य तादात्म किसके साथ जड़ के साथ चेतन के साथ ज्ञान के साथ। तो राग आदि सदैव जड़ रूप अचेतन है इनको पुद्गल का क्यों कहा उसके लिए चार बिंदु होता कि समझ बहुत सारे पूछते थे मैंने चार बिंदु उसमें से निकाले कर्ता कर्माधिकारी में से। राग आदि को कहीं जीव का भी कहते हैं कहते ना 189 गाथा प्रवचन सार में वो कैसे तेरा अपराध है फिर स्वीकार कर कर्म के मध्य मत मान। तो उसमें चार बिंदु निकलते हैं क्या काम बन जाता तो कहता हूँ करूँ मैंने किया अने बगड़ी गया इन बिगाड़ा उनने बिगाड़ा कर्म का उदय ऐसा था अथवा अपन कर्मबद्ध करे आने वाले काम बन गया तो मैं कर रहा था और बिगड़ गया तो हम क्या करें कर्मबद्ध में यही होना समझाए कर्मबद्ध। तो वहां पर क्या स्थिति है कर्ता कर्मादि की ये बतलाया जब जब राग आदि उत्पन्न होते हैं तब तब क्या होता है बता तेरा उपयोग है पर का आश्रय लिया होता है ओके पर का माने किसका पुद्गल का आश्रय में पुद्गल और कर्णानियोग कहता है तब तब चार आदि का उदय होता है माने उदय में पुद्गल आश्रय में पुद्गल उदय में पुद्गल ये तो दो बिल्कुल आगम सिद्ध है अनुभव सिद्ध है। और तीसरा पुद्गल का लक्षण क्या है पूर्यंती गलयंती थी पुद्गल पूर्ण गलन करती है आपने मेरी बात मान ली मित्र हो गए नहीं मानी द्वेष हो गया राग गल गया द्वेष हो गया फिर बाद में मान ली तो द्वेष गल गया तो राग हो गया ये पूर्ण गलन स्वभाव वाले हैं राग द्वेष मिलना बिछोड़ना होता रहता है। और चौथा जैसे पुद्गल में चेतनता नहीं जड़ है ऐसे वो राग द्वेष के सारे प्रणाम अचेतन जड़ है माटे पुद्गल है चेतन नहीं भिन्न है कितना भिन्न है सर्वतः ऐसा ही अलौकिक विज्ञान का शीर जो हुआ मैं तो निश्चित समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को रियली बहुत सारी भूलें निकल गई होंगी और निकल जाना चाहिए और जो समझा था उसको बहुत सारों ने कन्फर्म पक्का कर लिया हो स्वयं पर कभी भी टू डिस्क्रिमिनेट एंड रियलाइज द सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द नॉन सेल्फ इतना ही तो भी ज्ञान सेल्फ पर अकेले डिस्क्रिमिनेट करना वो निर्णय है और रियलाइज करना वो अनुभव अभी समय हो गया जिनवाणी कुछ कहना है एक मिनट
कल एक दर्शन मांगे गया था यहाँ पे कोई भाई का था।